वेणु गीत के इस 18वें श्लोक के ऊपर चर्चा आज भी जारी रहेगी। विषय है गोवर्धन। तो पुनः इस श्लोक का उच्चारण हम सब करेंगे। आज तक जो उच्चारण नहीं कर चुके हैं, आप में से भी कोई उच्चारण कर सकते हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य, पानीयसूय वस कंदर कंद मूलैः, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो। दास वर्य हरि भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ, और षड गोस्वामियों ने भी इसी दृष्टि से देखा। चैतन्य महाप्रभु ने भी गोवर्धन को श्री कृष्ण के लीलाओं के संबंध में देखा। कल ये चर्चा हो रही थी कि कैसे महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में एक बालू के पर्वत को गोवर्धन समझा और भाव विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी, जो उपदेश दिया, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य भक्तों ने बहुत ध्यान से स्वीकार किया। संक्षेप में हमने कल ये बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने अपनी गोवर्धन शीला और गुंजमाला प्रदान की। आज इसके बारे में थोड़े विस्तार में सुनेंगे और अन्य लीलाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम था शंकरानंद सरस्वती। एक बार वो वृंदावन आए थे यात्रा के लिए, और वृंदावन से उन्होंने एक शालिग्राम शिला, एक गोवर्धन शिला ली थी और साथ साथ एक गुंजमाला। जब वो जगन्नाथपुरी लौट कर आए तो उन्होंने इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों में भेंट किया। चैतन्य महाप्रभु ने इस भेंट को स्वीकार करके वो बहुत प्रसन्न हुए, और हमेशा इस गोवर्धन शिला को अपने साथ में रखते थे। कभी कभी अपने हृदय से स्पर्श करते थे, कभी अपने आँखों से स्पर्श करते थे, कभी अपने सर पे स्पर्श करते थे, कभी अपने नाक से सूंघते थे, और कई बार गोवर्धन शिला को अपने पास में रखते हुए उस शिला को अपने अश्रुओं से नहला डालते थे, भक्ति के प्रेम के अश्रुओं से। और इस प्रकार से वो कहते थे कि ये जो शिला है ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन जगन्नाथपुरी में आए तो उन्होंने उच्चतम श्रेणी के वैराग्य का प्रदर्शन किया। पहले तो जगन्नाथ का महाप्रसाद लेते थे, जो गोविंद जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे उनको आकर देते थे। बाद में वो छोड़कर वो बाहर खड़े रहते सिंह द्वार के, वहाँ भिक्षा मांगते, जो भी लोग आते कुछ देते। इसके बाद में ये भी छोड़ दिया। इस तरह से समय समय पर उनका वैराग्य, उनकी तपस्या बढ़ती गई। जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के इस वैराग्य को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, यहां देखे महाप्रभु प्रसन्न हो गौर भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु के भक्तों के जो विशेष गुण है उनमें से वैराग्य प्रधान है। बड़े सरल जिया करते थे, ऐसे नहीं कि उनको अपने लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता थी। और जब महाप्रभु ने ये देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे भक्त जो है इतना सरल जीवन जी रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसके मूर्तिमान रूप है, वैराग्य प्रधान। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर और उनको बुलाया, और ये गोवर्धन शिला और ये गुंजमाला उनको अपने कर कमलों से उन्होंने भेंट कर दिया। और फिर उनको उन्होंने आदेश दिया कि देखो, ये जो गोवर्धन शिला है ये कृष्ण का ही निजी रूप है, इसको कोई साधारण नहीं समझना, और इसको बड़े आतुरता से, बड़े आग्रह से इसकी सेवा करना। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने एक निकट पार्षदों में से एक समझा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो ये तर्क लगाते हैं कि क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, वैश्यों के कुल में हुआ था, इसलिए उनको अर्चा विग्रह की सेवा करने का अधिकार नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको अर्चा विग्रह की सेवा का आदेश न देकर उनको केवल एक गोवर्धन शिला दे दी पूजा करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात का खंडन करते हैं और टीका करते हैं, कहते हैं कि ये बुद्धि जो है, ये तर्क जो है, ये नारकीय है, बहुत गलत है, ये एक अपराध है। दो दृष्टि से, पहले कि वो गोवर्धन शिला को भगवान के विग्रह से अलग मानते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान का विग्रह कुछ एक श्रेणी का है और गोवर्धन शिला कुछ और है, लेकिन गोवर्धन शिला भी साक्षात प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो यह भगवान के चरण कमलों में, गोवर्धन के चरण कमलों में एक अपराध हो गया, क्योंकि ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि वास्तव में गोवर्धन का महात्म्य क्या है। और दूसरा अपराध जो इसमें होता है कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी को भौतिक दृष्टि से देख रहे थे, ये भी एक नारकीय बुद्धि है। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में न हुआ हो, परंतु वो श्रेष्ठ वैष्णव थे, उनके माता पिता भी वैष्णव ही थे, पर स्वयं भी वो तो श्रेष्ठ वैष्णव थे, और इसलिए ऐसे एक श्रेष्ठ वैष्णव को जाति की दृष्टि से देखना ये भी एक अपराध है, ये नारकीय बुद्धि है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में गोवर्धन शिला की पूजा करना और अर्चा विग्रह की पूजा करना, इन दोनों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से गोवर्धन शिला को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने यह घोषणा की कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी मेरे सर्वश्रेष्ठ पार्षदों और भक्तों में से हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि इस शिला की अर्चना करो, पूजा करो सात्विक भाव में, एक आदर्श ब्राह्मण की तरह, क्योंकि ऐसे उपासना से तुम्हें कृष्ण का प्रेम धन मिलेगा, राधा कृष्ण के चरणों में तुम्हें पूरा आश्रय मिल जाएगा। और इसके लिए आवश्यकता क्या है? बहुत सरल उपासना है, महाप्रभु ने उपदेश किया, थोड़ा सा जल चाहिए, गंगा जल हो तो बहुत श्रेष्ठ है। गंगा जल के अलावा एक तुलसी मंजरी, थोड़े से तुलसी मंजरिया चाहिए बस। और इस प्रकार से पूरी शुद्धता से, सात्विकता से अगर तुमने उपासना की तो तुम्हें बहुत ही जल्दी कृष्ण भक्ति की उच्चतम श्रेणी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से तुलसी के मंजरी जो होते हैं, मंजरी मतलब फूल, तुलसी के फूल, इन 8 मंजरियों को अर्पण करना, और हरेक मंजरी के साथ साथ 2 तुलसी के दल या पत्ते, एक इस बाएं तरफ एक दाहिने तरफ, तो हर एक मंजरी के साथ 2 तुलसी के पत्ते इनको अर्पण करना, और ऐसे साथ साथ गंगा का जल, और केवल इतना करोगे तो तुम्हें सारी सिद्धियां भक्ति की प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपने हाथों से रघुनाथ दास गोस्वामी को वो शिला और गुंजमाला अर्पण कर दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़े प्रसन्न होकर दिव्य आनंद में गोवर्धन शिला की उपासना करना आरंभ कर दिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी उनकी पूजा की सहायता के लिए 2-6 इंच लंबे कपड़े दिए और फिर एक लकड़ी का आसन दिया गोवर्धन शिला की पूजा के लिए, और साथ साथ उनकी पूजा के लिए एक कमंडलू भी दिया जल के लिए। ऐसे थोड़े दिन बीत गए और रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े भक्ति भाव से गोवर्धन शिला की पूजा करते रहे। इस शिला को चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वो श्री नंद नंदन कृष्ण से अभिन्न देखते थे। प्रत्यक्ष श्री नंद नंदन को इस गोवर्धन शिला में वो देखते थे, भिन्न नहीं समझते थे। इसी भाव से हमें भी अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, कोई प्रतिमा या साधारण मूर्ति नहीं समझनी चाहिए, ये तो साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। और जब ऐसे थोड़े समय तक वो करते रहे तो वो हमेशा स्मरण करते थे इस पूजा के समय कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की और इस गोवर्धन शिला की उपासना की संधि मुझे दे दी। और फिर वो भाव विभोर होकर बड़े प्रेम से इस गोवर्धन शिला की पूजा करते रहते। जो दिव्य आनंद रघुनाथ दास गोस्वामी को अनुभव होता था गोवर्धन शिला की पूजा करने में, वो आनंद शायद किसी को भी षोडशोपचार करने से, अर्चा विग्रह की सेवा षोडश मतलब 16 उपचारों से करने से भी नहीं मिल सकता। वैसे अर्चना विधि में 16 उपचारों का अर्पण करने का नियम है, कई तरह की चीज़ जैसे अर्घ्य है, पाद्य है, कई चीज़ें, फूल हैं, अगरबत्ती है, ऐसे 16 चीज़ें उपचार होते हैं। तो अगर किसी ने पूरी प्राण प्रतिष्ठा किए हुए विग्रह की सेवा 16 उपचारों से किया, फिर भी शायद उन्हें इतना दिव्य आनंद नहीं मिलेगा जितना कि रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला इस गोवर्धन शिला की पूजा भक्ति भाव से करने से। जब थोड़ा समय ऐसे बीत गया, फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके पास आए और उन्हें कहने लगे कि 8 कौड़ी जितना, कौड़ी मतलब एक पैसे का वो रूप था वहां पर, जैसे यहाँ हम रुपए पैसे होते, वहाँ उसमें कौड़ी था। तुम 8 कौड़ी में जितना आपको संदेश और खाजा मिलता है, ये मिठाइयाँ, ये गोवर्धन को अर्पण करो और भक्ति से अर्पण करने से इनका स्वाद अमृत तुल्य हो जाएगा। तो ये खाजा एक प्रकार का विशेष पदार्थ है, मीठा है, जो कि जगन्नाथपुरी में बनता है। आप सबने खाया होगा ना, सेवन किया है आप में से? खाजा कितने भक्तों ने खाया है? प्रसाद खाजा होता है लंबा सा, लंबा सा बहुत मीठा होता है। और संदेश तो आप सबने सेवन किया ही होगा। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि इन दो चीजों को अवश्य आप अर्पण करना आज से। ये तो महंगी चीजें थी, इसलिए जगन्नाथ की महाप्रसाद जो है वो महाप्रसाद ने जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, वो रोज आकर दिया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। और इस प्रकार से वो ऐसे अर्पण करके बड़े आनंद से फिर इस प्रसाद को बांटते थे। तो जो भक्ति भाव से भोग अर्पण किया जाता है भगवान को, वो भगवान उतने ही आनंद से इस भोग को स्वीकार करते हैं। जितने ज्यादा शुद्धता से, पवित्रता से, सात्विकता से, भक्ति से हम भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं, उतने ही आनंद से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि हम, कि हम जैसे भगवान के सामने आते हैं उसी भाव से भगवान हमारे किए हुए अर्पण किए हुए वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। तो भोग जब भक्ति भाव से चढ़ाया जाता है तो भगवान जितना ज्यादा भक्ति से प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं उतना स्वादिष्ट वह हो जाता है। इसलिए कृष्ण प्रसाद जो है वो स्वादिष्ट होता है, भले वो साधारण खिचड़ी क्यों न हो, लेकिन जब कृष्ण को अर्पण किया जाता है तो उसका स्वाद जो है अतुल्य होता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे इस्कॉन के मंदिर में भक्त आते हैं केवल खिचड़ी खाने के लिए यहां पर आते हैं। कितने ऐसे लोग हैं बोलते कि ऐसी खिचड़ी हमने कहीं नहीं खाई है। घर में, होटल में तो बहुत सारे तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, लेकिन यहां पर साधारण खिचड़ी खाने के लिए आते हैं जिसमें ज्यादा पदार्थ भी ना हो, ज्यादा सब्जियां वगैरह भी ना हो, काजू किशमिश भी ना हो, लेकिन साधारण खिचड़ी खाने। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण प्रसाद है। तो आप हम कल्पना कर सकते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने जिस भक्ति भावना से ये खाजा और संदेश अर्पण किया तो वह कितने स्वादिष्ट हुए होंगे, अमृत तुल्य। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, उन्होंने मुझे ये गोवर्धन शिला देकर गोवर्धन के चरणों में मुझे उन्होंने आश्रय दिया और ये गुंजमाला मुझे देकर उन्होंने मुझे श्रीमती राधारानी के चरण कमलों में आश्रय दिया। कल हम रघुनाथ दास गोस्वामी के शतक को पढ़ रहे थे ना, गोवर्धन वास प्रार्थना दशक, जिसमें आखिरी श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, निरूपधि करुणेन श्री शचिनंदनेन त्वयि कपटिष्ठोपि त्वत् प्रियणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्या योग्यतां ताम घृणन निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम्। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपके प्रिय श्री शचिनंदन ने मुझे आपके हवाले कर दिया है, इसलिए कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए मेरी योग्यता अयोग्यता न देखकर। तो क्यों ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन शिला उनको दी थी। तो इस कार्य से रघुनाथ दास गोस्वामी समझ लिया कि महाप्रभु ने मुझे गोवर्धन के चरणों में आश्रय दिला दिया है, इसलिए वो गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे थे कि क्योंकि महाप्रभु आपके लिए बहुत प्रिय हैं, हम तो शठी हैं, कपटी हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आपके लिए इतने प्रिय हैं और उन्होंने मुझे आपके चरणों में अर्पण किया है, इसलिए मेरी योग्यता अयोग्यता न देखते हुए कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसी भावना से रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन शिला की पूजा करते रहे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने शरीर और मन को लगाकर मग्न रहे। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी इस गुंजमाला को, जो कि श्रीमती राधारानी का प्रतीक है, गोवर्धन शिला को अपने पास रखते हुए कभी कभी गुंजमाला अपने गले में भी पहन लेते थे, क्योंकि इससे उनको श्रीमती राधारानी का भाव अनुभव हो जाता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी कभी कभी ऐसे किया करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन गए यात्रा में अपने मध्य लीला के समय, उन्होंने भी गोवर्धन का दर्शन किया, गोवर्धन की परिक्रमा की। चैतन्य महाप्रभु जब वहां उस भाग में आए, राधा कुंड में आए, अलग अलग वनों में भ्रमण करते थे और वहां से आकर मानसी गंगा में स्नान किया, हरिदेव का दर्शन किया। हरिदेव का दर्शन करते करते बड़े प्रेमावेश में आकर कीर्तन और नृत्य करने लगे। वहाँ के जो पंडा थे और अन्य लोग, जो यात्री आए थे, भक्त आए थे, वो देखकर विस्मित हो गए किस तरह से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। उस रात वहीं पर चैतन्य महाप्रभु रुके और फिर गोवर्धन की ओर निकल पड़े। मानसी गंगा से ही जब उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया, पूरा दंडवत, दंडवत, दंडा, दंड की तरह नीचे हो जाना, पूरी तरह से दंडवत को उन्होंने प्रणाम किया और फिर आगे गोवर्धन के पास चलते आए। और वहां पर आकर एक गोवर्धन शिला को उन्होंने देखा और उन्मत्त होकर उन्होंने इस गोवर्धन शिला को आलिंगन किया और बिल्कुल भाव विभोर हो गए। जब गोवर्धन के पास आने का विचार उनके मन में आया तो उन्होंने सोचा कि मैं तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर मैं नहीं चढ़ सकता, तो गोपाल जी का दर्शन कैसे होगा? आपको याद होगा कि गोपाल जी किनको प्रकट हुए थे? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के कौन थे? परम गुरु थे। उन्होंने गोपाल जी को ढूंढ निकाला था झाड़ियों में से, क्योंकि गोपाल जी स्वयं माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए थे और कहा था कि मैं बहुत दिनों से यहाँ पर हूँ और मुझे ढूंढ निकालो। उन्होंने आदेश दिया था उनको, क्योंकि ये वही रूप है जो कि वास्तव में श्री कृष्ण के समय से थे। वज्रनाभ ने इस मूर्ति की स्थापना की थी, लेकिन फिर मुगलों के आक्रमण के डर से उनको वहाँ के लोगों ने छुपा दिया था और कई सालों से वो झाड़ियों में थे। तो गोपाल जी ने कहा कि यहाँ की ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, इन कांटों से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो मुझे झाड़ियों से निकालकर मुझे प्रस्थापित करो और फिर मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। तो माधवेंद्रपुरी ने सारे भक्तों को ले जाकर गोपाल जी की स्थापना की, उनको ढूंढ निकाला और उनकी स्थापना की गोवर्धन के ऊपर अन्नकूट नाम के गांव में। तो गोपाल जी का मंदिर जो है, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर था, चैतन्य महाप्रभु ऊपर चढ़ना नहीं चाहते थे, वो जानते थे कि ये तो भक्त भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो इनके ऊपर हम कैसे चरण रख सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो खैर ऐसे सोचते सोचते वो आ रहे थे गोवर्धन की, वही रात में निवास कर रहे थे मानसी हरिदेव मंदिर में। उधर गोपाल जी ने सोचा ये तो भक्त का वेश धारण करके आए हैं और इसलिए ऊपर मेरे ऊपर चढ़ना नहीं चाहते मेरा दर्शन करने के लिए, तो ठीक है मुझे कुछ युक्ति सोचनी चाहिए जिससे कि मैं खुद जाकर महाप्रभु को दर्शन दे दूं। फिर उसी रात क्या हुआ कि वहां पर जहां मंदिर था अन्नकूट गांव में, वहां पर राजपूत लोग रहा करते थे जो उनकी सेवा करते थे, वहां के निवासी राजस्थान से आए हुए थे राजपूत। अचानक एक व्यक्ति आए उनको खबर पहुंचाने के लिए कि मुगल लोग, तुर्की लोग जो है भी आक्रमण करने वाले हैं, खबरदार आप जल्दी से यहां से निकल जाइए और अब गोपाल जी को भी कोई सुरक्षित स्थान में ले जाइए। तो सब लोग घबरा गए कि गोपाल जी का क्या होगा। तो गोपाल जी को तुरंत वहां से उन्होंने स्थानांतरित किया गांठुली ग्राम नाम के एक जगह में। गांठुली ग्राम, आप में से जो वृंदावन की परिक्रमा कर चुके हैं अब शायद आपको याद होगा कि यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण के कपड़े में गांठ बांध दी थी, इसलिए गांठुली ग्राम। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में फिर गोपाल जी रहे थोड़े समय के लिए, उनकी पूजा होती रही और 3-4 दिन जो है इधर उधर वो घूमते रहे अलग अलग घरों में, क्योंकि मुगलों के डर से। और उस समय चैतन्य महाप्रभु आए, गोवर्धन का दर्शन उन्होंने किया और दर्शन करते करते बड़े भाव विभोर हो गए और दंडवत प्रणाम किया और बड़े भक्ति से, भक्ति भाव से उन्होंने परिक्रमा किया। उस समय उन्होंने फिर से यही श्लोक का उच्चारण किया जिसकी चर्चा हम वेणुगीत में कर रहे हैं, हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो। आपको याद होगा कि अंतिलीला के समय जब वो चटक पर्वत के पास आए थे गोवर्धन पर्वत समझकर उस पर्वत को, उस समय भी उन्होंने श्लोक का उच्चारण किया और अब जबकि गोवर्धन के सामने प्रत्यक्ष रूप से आए उस समय भी इसी श्लोक का उच्चारण वो उन्होंने किया। तो ऐसे परिक्रमा की और फिर गोविंद कुंड में स्नान किया और उस समय उन्होंने सुना कि गोपाल जी अब यहाँ पर नहीं हैं, वो तो गांठुली ग्राम में हैं। तो जल्दी से चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए, वहाँ पर गोपाल जी का बड़े भक्तिभाव से उन्होंने दर्शन किया और 3 दिन लगातार वहां पर रहे। वहां पर जब रहे तो खूब संकीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने, साथ साथ नृत्य भी किया। और जब पहली बार गोपाल जी का उन्होंने दर्शन किया तो उन्होंने ये श्लोक का उच्चारण किया,
वामस्ताम रक्षाक्षस्य भुजदंडस पातुवः क्रीडा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धनो गिरिः।
वामः, वामः मतलब बाया, बाया हाथ से। तामरस अक्षस्य मतलब जिनके तामरस जैसे अक्ष या आंख हैं। तामरस एक कमल पुष्प है, लाल रंग का कमल पुष्प। जैसे आप जानते हैं कि कमल पुष्प कई रंग के होते हैं, साधारणतः सफेद रंग के होते हैं लेकिन नीले रंग के भी हो सकते हैं, तो उनको नीलोत्पल कहते हैं। ऐसे तरह तरह के रंग के कमल होते हैं, जो लाल रंग का कमल होता है ताम्र रंग का, उसको तामरस कहते हैं। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तामरस अक्षस्य, तो उनकी जिनके की तामरस अक्ष हैं, कमल नयन लाल कमल जैसे आंखें हैं और जिन्होंने की वामह भुज दंड अपने बाएं हाथ से करकमलों से उन्होंने क्या किया, सपातु वह उन्होंने आप सबकी रक्षा की। क्रीड़ा कंदुकताम येन, क्रीड़ा कंदुकताम मतलब एक खिलौने की तरह, उन्होंने क्या किया येन नीतो गोवर्धनो गिरिः, उन्होंने गोवर्धन गिरी गोवर्धन को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। कैसे उठाया, जैसे बच्चा खिलौने को उठाता है, आसानी से खिलौने के जैसे उसको उठा दिया। और सपात वह आप सबकी रक्षा करे। तो इस रूप में उन्होंने श्री कृष्ण का और गोवर्धन का स्मरण किया। फिर वहां पर रहे 3 दिन गोपाल जी के साथ। फिर जब 4th दिन सबको ये विश्वास हो गया कि ठीक है अभी मुगल नहीं आ रहे यहां पर आक्रमण करने के लिए, तो फिर से उन्होंने गोपाल जी को अन्नकूट में स्थानांतरित किया और चैतन्य महाप्रभु इस यात्रा के साथ साथ चले पीछे पीछे खूब कीर्तन करते करते। और बड़ी संख्या में इधर उधर से लोग आए थे क्योंकि अभी गोपाल जी वापस अपने मंदिर में जा रहे थे। तो इस तरह से गोपाल जी ने चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पे नहीं चढ़ना चाहते थे तो गोपाल जी आए उनको दर्शन देने के लिए। ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के निकट पार्षद उनके प्रिय शिष्य रूप गोस्वामी जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो वो भी गोवर्धन की परिक्रमा करने आए, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो जान बहुत वृद्ध हो गए थे। अब उनकी ये दशा नहीं थी कि वो परिक्रमा करे, तो अपने मन में वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए, मैं कैसे गोपाल जी का दर्शन करूं जबकि अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं और मेरे शरीर के अंदर ये ताकत नहीं है। तो गोपाल जी ने वही किया जो कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ किया था। अचानक कोई लोग आए, उन्होंने कहने लगे कि मुगल आक्रमण करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं। तो तुरंत उस समय गोपाल जी को फिर से भक्त लोग ले गए और इस समय मथुरा में उनको रखा उन्होंने। और रूप गोस्वामी अन्य गोस्वामियों के साथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी और कई अन्य भक्त थे जो उनके साथ में थे और वो मथुरा में थे। तो मथुरा में उन्होंने पूरा 1 महीना जो है वो गोपाल जी का दर्शन किया। गोपाल जी उस समय विट्ठलेश्वर नाम के एक भक्त के घर में थे। ये विट्ठलेश्वर जो हैं ये वल्लभ भट्ट के पुत्र थे जो आगे चल के वल्लभ भट्ट के बाद पुष्टि संप्रदाय के आचार्य बने। पुष्टि संप्रदाय के पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो गुजरात राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है उसके प्रमुख आचार्य वल्लभ आचार्य माने जाते हैं। तो वल्लभ भट्ट इनके पुत्र थे विट्ठलेश्वर। तो इनके घर में गोपाल जी विराजे थे 1 महीने के लिए और उस समय रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामी उन्होंने जी भर के दर्शन किया भगवान का। तो इससे हम देख सकते हैं कि गोपाल जी बड़े कृपालु हैं। जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए उन्होंने युक्ति सूझी थी, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी के लिए भी, क्योंकि रूप गोस्वामी न केवल वृद्ध थे लेकिन जवान भी होते तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं दर्शन करने के लिए। इसलिए गोपाल जी अपने भक्तों के लिए भी देखो क्या नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम भी चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामियों के पद चिन्हों में चलते हैं। हम रूपानुग हैं, रूप अनुग, रूप गोस्वामी के पीछे पीछे चलने वाले, उनके आदेशानुसार अपना जीवन बिताने वाले गौड़ीय वैष्णवों को रूपानुग कहते हैं। तो हमें भी कभी गोवर्धन के ऊपर कदम नहीं रखना चाहिए। बाहरी बाहर से जो परिक्रमा का पथ बनाया है वहां से हमें परिक्रमा करनी चाहिए। हालांकि कभी कभी थोड़े ब्रजवासी ऊपर चढ़ भी जाते हैं लेकिन हम तो ब्रजवासी नहीं हैं, हमें ब्रजवासियों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो हमें केवल बाहर से ही जाना चाहिए, बड़े सम्मान से गोवर्धन का दर्शन करना चाहिए। रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा मानसी गंगा से शुरू करनी चाहिए। मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव का दर्शन करके फिर हमें आगे चलना चाहिए और परिक्रमा का अंत जो है वो भी मानसी गंगा में ही होना चाहिए स्नान से। आदिवरह पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसे कृष्ण के धाम को की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे परिक्रमा का पथ जो है ये करीब करीब 25 किलोमीटर लंबा है, परंतु एक और बाहरी पथ है जो 40 किलोमीटर का है। और सनातन गोस्वामी जब वहां पर रहा करते थे तो वो उस बाहरी परिक्रमा पथ को स्वीकार करते थे, रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, एक बार 40 किलोमीटर रोज चलते थे ऐसे। वैसे साधारणतः अगर जल्दी से चला जाए तो 6 घंटे में सारी परिक्रमा पूरी हो सकती है, मानसी गंगा से शुरू होकर, जो कि गोवर्धन गांव में है, ग्राम से होकर धीरे धीरे से चलते चलते फिर पूंछड़ी तक पहुंचकर, पूंछड़ी से फिर मुखारविंद इत्यादि होकर फिर से गोवर्धन शहर में आके आगे चल के राधा कुंड, श्याम कुंड की परिक्रमा करके फिर कुसुम सरोवर वगैरह होकर फिर से मानसी गंगा में आना। ये पूरा चक्कर जो है, ये पूरा जो पूरी यात्रा है, करीब करीब 6 घंटे लग जाते हैं। थोड़ा सा धीरे चलेंगे तो 8 घंटे, कई लोग 12 घंटे भी लगाते हैं। लेकिन इस परिक्रमा पथ में 50, 60, 70, 100 ऐसे तीर्थ स्थान हैं, लीला स्थान हैं। अगर उन स्थानों में हम जाके हर एक स्थान की महिमा सुनें, दर्शन करें, थोड़ा बहुत जाप करें, कीर्तन करें, तो एक दिन भी कम है, कई दिन भी लग सकते हैं। तो एक बार हमने शुरू की परिक्रमा तो समाप्त करनी चाहिए। बीच में रुक जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जहां से रुके वहां से पुनः हमें आरंभ करना चाहिए और समाप्त करना चाहिए पूरी तरह से। तो ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा करना ये बहुत लाभदायक है। इन सारे लीला स्थानों की चर्चा इस बार के कृष्ण कथा में यहाँ पर करना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक स्थान का महात्म्य है। उसके लिए जब गोवर्धन की परिक्रमा होगी उसी समय सुनना उचित रहेगा और संभव रहेगा। तो खैर, इस बार अब ये चर्चा करते हैं कि गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ, गोलोक वृंदावन में गोवर्धन कैसे प्रकट हुए और फिर इस भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुए। वैसे गर्ग ऋषि पुराणों में, कोई इतिहासों में ये वर्णन करते हैं कि जब नारद मुनि और राजा बहुलाश्व के बीच में संवाद हुआ, उस समय गोवर्धन के विषय में काफी विस्तार में चर्चा हुई। हुआ यह कि एक बार गोलोक वृंदावन में रस स्थली में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां श्री कृष्ण के साथ में थीं। बड़ा रम्य वातावरण था वहां पर, दिव्य आनंद से सारे गोपियां और श्री कृष्ण वहां लीला कर रहे थे। थोड़ी देर में श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर आप हम सब के भक्ति को मूल्यवान समझते हैं और अगर आपको हम सब प्रिय हैं, वृंदावन प्रिय है, तो फिर हमारी एक इच्छा को पूरी कीजिए आप। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपके लिए इच्छा कौन सी हम नहीं पूरी करेंगे, तो अवश्य बोलो कौन सी इच्छा है। तो श्रीमती राधा रानी कहने लगी कि कृपया एक एकांत स्थान में, इस वृंदावन में यमुना के तट पर एक ऐसे अद्भुत अपूर्व लीला स्थली को निर्माण कीजिए जिसमें हम सब वृंदावन के निवासी, विशेष करके गोपियां, आप सबके साथ बहुत सारे लीलाएं कर सकें। तो कृष्ण भगवान, कृष्ण ने सोचा, सोचते सोचते अपने ही अंदर परीक्षा करने लगे, अपने हृदय के अंदर गए। अपने उनके हृदय के अंदर भक्ति का भाव का सार था, तो उस भक्ति भाव का सार जो है यही लादिनी शक्ति है। और ये इसी शक्ति से वास्तव में न केवल हम सबको, जीवों को, परंतु श्री कृष्ण को भी आनंद मिलता है। तो थोड़े समय सोचकर अपने अंदर अंतःकरण में जाकर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाना चाहिए। और जैसे ही गोपियां देख रही थीं, देखते देखते उनके हृदय से उनका जो प्रेम है एक बीज रूप में बाहर आया, और बीज रूप में आकर वो उस लीला स्थली में आ पहुंचा और वहां पे वो उगने लगा, बड़ा होने लगा, उसका विकास होने लगा और धीरे 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 से एक छोटा सा पहाड़ बन गया और बाद में विशाल पर्वत बन गया जो कि गोवर्धन है। और इस पर्वत के भीतर सारे ऐश्वर्य थे, सारा सौंदर्य था, जो लीला के सहायता करने के लिए जितने भी सारे सामग्री आदि आवश्यकता थी उनसे युक्त थे ये गोवर्धन पर्वत। बड़े सुंदर वृक्ष थे, हरियाली, कितने सारे कुंड, नदियां और पक्षी, हिरण, अन्य पशु, गुफे, और जैसे यह हम देख रहे हैं पानी सूय वसकंदर कंद मूल, सब कुछ जो भी कृष्ण लीला के लिए आवश्यक था वो सब गोवर्धन ने प्रदान किया। गोवर्धन श्री कृष्ण की लीलाओं को और मधुर बनाने में सर्वसमर्थ है, इसलिए राधा कृष्ण को गोवर्धन बहुत पसंद है। तो जब श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने देखा तो बहुत आनंदित हो गईं, और इस गोवर्धन में इधर उधर अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह घूमने लगीं, और फिर वहां कृष्ण लीला प्रकट हुई। वैसे हम ये पूछ सकते हैं कि अगर गोलोक वृंदावन, वृंदावन, यमुना, गोवर्धन ये सब शाश्वत हैं, तो फिर किसी चीज का निर्माण, निर्मिति होना वहां पर ये कैसे संभव है? ये किसी चीज का निर्माण होना ये तो भौतिक जगत में होता है, क्योंकि यहां समय, समय की सीमा है, सब कुछ यहां समय के वश में है, काल के वश में है। परंतु गोलोक वृंदावन में तो ऐसा नहीं है, काल का ये प्रभाव तो नहीं है। फिर भी वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि वहां पर गोलोक वृंदावन में, भगवान के धाम में, वर्तमान भविष्य क्रिया हमेशा जारी है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट। इसलिए वहां पर कृष्ण लीला को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐसे कभी कभी लगता है कि ये प्रकट होने होते हैं, कृष्ण लीला को और भी नवीन, नूतन बनाने के लिए और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। तो ऐसे कहा जाता है कि ये भगवान ने ये गोवर्धन पर्वत को प्रकट कराया। जब भौतिक जगत में हम कहते हैं कि कोई चीज प्रकट हुआ, किसी का जन्म हुआ, तो तुरंत हम सवाल करते हैं कब हुआ। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसे प्रश्न नहीं किए जा सकते। गोलोक वृंदावन में गोवर्धन पर्वत शाश्वत रूप में है भी और उसकी निर्मिति हुई भी, ये दोनों चीजों का समन्वय कैसे होना, ये हमारी बुद्धि से हम नहीं कर सकते। जब हम गोलोक वृंदावन जाएंगे उस समय इस चीज को समझ पाएंगे। तो खैर, इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत गोलोक वृंदावन में, भगवान के धाम में हमेशा है, शाश्वत रूप से है, और इनमें गोपगण, गोपियां श्री कृष्ण के साथ सदैव लीला करते हैं। फिर ये गोवर्धन पर्वत जो है ये यहां पर कैसे प्रकट हुए इस भौतिक जगत में, इसके बारे में भी एक वर्णन है शास्त्रों में। आप तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को वचन दिया था कि कोई चिंता नहीं करना, मैं इस भौतिक जगत में पृथ्वी लोक पर आऊंगा, अवतार लूंगा और देवताओं की सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। जब श्रीमती राधा रानी को पता चला था कि श्री कृष्ण भौतिक जगत में पृथ्वी लोक के ऊपर जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा हम भी आना चाहते हैं, आप हमको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, साथ साथ हमारे सारे भक्तों को, हमारे मित्रों को, गोप गोपियों को हम लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि हम हमारे सारे गोलोक वृंदावन को लेकर जाएंगे। तो गोलोक वृंदावन में गोवर्धन तो शाश्वत रूप में निवास करते हैं, तो गोवर्धन ने इस बात को जान लिया कि ये हमारे स्वामी की इच्छा है। तो उन्होंने भी सोचा कि कैसे मैं प्रकट हो जाऊं, तो वो प्रकट हो गए भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में शालमली द्वीप के केंद्र में, के बीच में। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में इन सारे अलग अलग भिन्न द्वीपों का वर्णन है, आपने पढ़ा होगा, भागवत क्लास में थोड़ी देर पहले ये सब चर्चा हो रही थी पंचम स्कंद में। तो फिर शालमली द्वीप में प्रकट हुए द्रोणाचल के पुत्र के रूप में। द्रोणाचल, द्रोण पर्वत, ये शालमली द्वीप में है, और वहां पर द्रोणाचल द्रोणाचल के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब गोवर्धन का जन्म हुआ तो सारे देवलोक में ये पता, खबर फैल गई, देवलोक में कीर्तन होने लगा, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, गंधर्व और भी संगीत में मग्न हो गए, खुशी की खबर सब जगह फैल गई, सभी लोग गोवर्धन का दर्शन करने के लिए आए, गोवर्धन का गुणगान करने लगे, और इस प्रकार से गोवर्धन शालमली द्वीप में प्रकट हो गए। द्रोणाचल अपने पुत्र से बहुत ही आसक्त थे, बहुत प्रेम करते थे, एक बार पुलस्त्य नाम के एक ऋषि शालमली द्वीप से गुजर रहे थे। उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया। इतना सुंदर रम्य स्थान, इतने सुंदर वृक्ष, सुंदर गुफाएं, सब कुछ यहां है। तो हर एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए देखता है ना? अपने फायदे के लिए क्या है? जैसे कोई व्यापारी है, वो जाके कोई चीज को देखता है, तुरंत उसको मन में विचार आएगा, हाँ ये अगर हम खरीद कर बेचें तो इसमें बहुत मुनाफा आएगा। या कोई विद्यार्थी है, वो सोचेगा, अगर अच्छा विद्यार्थी है, हाँ ये मेरे पढ़ाई के लिए अच्छा है, हम ये किताब खरीद लेंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने फायदे की दृष्टि से सोचता है, स्वाभाविक है। भक्त लोग भी जब देखते हैं वृंदावन में जाकर, अरे हाँ देखो ये तो बहुत अच्छा है, हम ये प्रसाद सब लेकर जाएंगे हमारे भक्तों को देने के लिए। तो अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने लाभ के अनुसार हर एक व्यक्ति सोचता है। तो पुलस्त्य ऋषि तपस्या करना चाहते थे, तो गोवर्धन पर्वत को जब उन्होंने देखा, उन्होंने भोग के दृष्टि से नहीं देखा, हाँ तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आदमी शायद कोई जाता सोचता था, हाँ कितने पेड़ हैं, उसको काट कर बेचेंगे कितना धन मिलेगा। पुलस्त्य ऋषि ने सोचा, देखो तपस्या करने के लिए कितना उपयुक्त स्थान है। तो फिर वो गए द्रोणाचल के पास, जिस तरह से विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास गए थे पुत्र पूछने के लिए। तो द्रोणाचल से उन्होंने कहा कि आपके जो पुत्र हैं गोवर्धन, मैं इनके ऊपर निवास करके मैं तपस्या करना चाहता हूं, क्योंकि आपके पुत्र की तरह और कोई तपस्या का स्थान जो है वो नहीं है। मैं जानता हूं कि इसके ऊपर तपस्या करके मैं तपस्या की परिपूर्णता प्राप्त कर सकता हूं, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, तो कृपया मेरी मदद कीजिए, गोवर्धन को मेरे साथ में आप भेजिए। तो द्रोणाचल बेचारे बहुत आसक्त थे अपने पुत्र से, जैसे दशरथ महाराज श्री राम से थे, बड़े उदास हो गए, प्राय रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, मेरे पुत्र से मैं बहुत प्रेम करता हूं, इसको मत ले जाना। तो पुलस्त्य ऋषि गुस्सा हो गए, जैसे विश्वामित्र मुनि गुस्सा हो गए थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी ये पुलस्त्य मुनि का शाप लग जाए बहुत खतरे की बात है। तो एकांत स्थान में अपने पुत्र गोवर्धन को ले गए और बताया कि देखो बेटा समस्या ऐसे ऐसे है, क्या क्या करना चाहिए। तो गोवर्धन ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं चले जाऊंगा, ये भी भगवान की योजना है और मैं सब मामला संभाल लूंगा, आपको चिंता नहीं कीजिए। तो उस समय द्रोणाचल भी अच्छी तरह से जानते थे कि भारतवर्ष जो है मुक्ति की भूमि है, तपस्या की भूमि है, तो जो व्यक्ति वहां पर निवास करेगा उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत आसान है अगर वो चाहे तो। तो द्रोणाचल ने सोचा, ठीक है देखो बेटा, तो मुक्ति के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्थान मिल गया, अभी भारतवर्ष में जाके मुक्त हो जाना। द्रोणाचल तो ये नहीं जानते थे कि गोवर्धन दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो खैर, फिर द्रोणाचल और गोवर्धन पुलस्त्य मुनि के सामने आए और गोवर्धन ने कहा कि हे मुनिवर, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा शर्त है कि आप मुझे उठाकर ले जाइए, परंतु आप मुझे रोक नहीं सकते, और जहां आप रुकेंगे फिर उस स्थान से अगर आपने मुझे नीचे रखा तो। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा, ठीक है मंजूर है। वैसे पुलस्त्य मुनि काशी में निवास करते थे। जब वो द्रोणाचल के पास पास आए थे तो वो कहने लगे कि हर तीर्थ स्थान में पर्वत है, लेकिन काशी में जहां के विश्वेश्वर शिवजी निवास करते हैं वहां कोई पर्वत नहीं है, तो मैं गोवर्धन को काशी में ले जाना चाहता हूं और वहां तपस्या करना चाहता हूं। तो जो शर्त गोवर्धन ने रखा वो पुलस्त्य मुनि ने स्वीकार किया और उठाकर ले गए। आसानी से गोवर्धन उनके हस्त पे आ गए, उनके हाथों में आ गए। चलते 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 बहुत दूर चले पुलस्त्य मुनि, कई पहाड़ों को पार किया, काफी दूर चलते चलते उन्होंने सागर को भी, कई समुद्रों को भी पार किया, शलमले द्वीप से अंत आखिर वो आ पहुंचे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में भी चलते 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 वो ब्रजभूमि से होकर काशी की ओर जा रहे थे। जाते जाते उस समय गोवर्धन ने सोच ली, अरे ये तो वही स्थान है, ये तो मेरा स्थान है, ये तो गोलोक वृंदावन है, श्री कृष्ण ने यहां गोलोक को प्रकट किया, ये मुझे यहीं रहना होगा। तो फिर गोवर्धन ने सोचा कि अब मुझे यहां रहना है, तो गोवर्धन बहुत भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि पुलस्त मुनि अब उसको उठा नहीं सके, तो वहीं पर नीचे रख दिया। और उस समय भगवान की योजना से उनको अचानक प्रकृति के बुलावों का उत्तर देना था, तो उनको अचानक जाना पड़ा। तो फिर नीचे गोवर्धन को उन्होंने रख दिया, भूल गए कि क्या वचन उन्होंने दिया है, गोवर्धन ने क्या शर्त सामने रखा था, वो भूल गए और चले गए। फिर अपना काम करके, स्नान वगैरह करके जब वापस आए, तो विश्राम करने के बाद कहने लगे, चलो गोवर्धन अब आगे चलते हैं काशी की ओर, चलो उठो। लेकिन गोवर्धन उठने के लिए तैयार नहीं, तो बहुत कोशिश किया लेकिन एक बीज मात्र भी उठा नहीं सके गोवर्धन को। क्या बात है गोवर्धन, क्यों नहीं उठ रहे हो, उठो। तो गोवर्धन ने कहा कि हे मुनिवर, क्या आपको याद नहीं है कि हमने शर्त रखा था आपको, आपके सामने, और आपने स्वीकार भी किया था इस शर्त को कि अगर आप मुझे कहीं एक बार रख दोगे नीचे, फिर मैं उठूंगा नहीं, और आपने मुझे यहां रख दिया इसलिए मैं अब उठूंगा नहीं। आपको याद है ऐसे एक इसी तरह की घटना और कौन सी लीला में हुई थी? रावण नहीं, विभीषण। विभीषण क्या ले जा रहे थे? रंगनाथ जी को, भगवान को, भगवान की सुंदर मूर्ति को। वो मूर्ति कहां से आई, किन्होंने दिया उनको? श्री रामचंद्र ने भेंट दिया विभीषण को। जब श्री रामचंद्र फिर राज सिंहासन पर बैठे रावण का वध करने के बाद, तो ये इस मूर्ति की उपासना कौन करते थे? स्वयं श्री राम करते थे। फिर उन्होंने विभीषण के हवाले कर दिए और विभीषण उसको लेकर गए, लेकिन शर्त क्या था? नीचे नहीं रखना चाहिए, जहां नीचे रखोगे वहां पे रह जाएंगे। तो विभीषण ले जा रहे थे, तो उस समय भगवान चाहते थे कि मैं इस स्थान में रुक जाऊं। तो वही हुआ जो कि पुलस्त मुनि के साथ हुआ, अचानक उनको जाना पड़ा, तो उन्होंने रख दिया नीचे। तो जब नीचे रखा तो वापस आए तो रंगनाथ जी हिले नहीं वहां से। तो फिर वो समझ गए कि भगवान की इच्छा है कि यहीं पर रहें। उस स्थान का नाम क्या है? श्रीरंगम, रंग क्षेत्र। और विभीषण के ऊपर कृपा करने के लिए इस मूर्ति ने क्या किया? दक्षिण की ओर अपना मुंह किया। हालांकि अन्य मूर्तियां जो है पूरब की ओर अपना मुंह करती हैं, लेकिन इन्होंने दक्षिण की ओर किया, विभीषण की ओर, अपने प्रिय भक्त लंका की ओर। और आज भी कहा जाता है कि विभीषण समय समय पर आते हैं और रंगनाथ की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो खैर, यहां जब गोवर्धन उठने के लिए तैयार नहीं हुए, हालांकि जो गोवर्धन ने किया था वो कुछ गलत नहीं था, शर्त के अनुसार जो ठीक था, परंतु पुलस्त मुनि को बहुत गुस्सा आया। आखिर इतना कष्ट लेकर अब पर्वत को धारण किए हुए शालमल द्वीप से भारतवर्ष आए हैं अपनी तपस्या के लिए। इतने लंबे समय से यह आशा अपने मन में रखी थी कि मैं काशी विश्वनाथ के पास ले जाऊंगा, वहां पे फिर मैं तपस्या करूंगा। अब इतना दूर आकर थोड़ा ही समय बच गया, ज्यादा दूर नहीं है ब्रजभूमि काशी से, अभी यहां पर रुक गए, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने शाप दिया गोवर्धन को। क्या शाप दिया? कि सरसों के बीज की मात्रा में तुम हर रोज छोटे होते जाओगे, एक बीज की मात्रा में, एक दिन में। फिर गोवर्धन ने स्वीकार किया इस शाप को, और वास्तव में आज गोवर्धन पर्वत पहले के हिसाब से बहुत छोटा है। उस समय गोवर्धन पर्वत 8 योजन लंबे थे, 5 योजन चौड़े और 2 योजन ऊंचाई में। 2 योजन मतलब 16 मील हो गए, 1 योजन मतलब 8 मील। तो पहले 16 मील की ऊंचाई और अब गोवर्धन सबसे ऊंचे भाग में केवल 80 फुट की ऊंचाई में है। तब समझ सकते हैं कि पुलस्त मुनि के श्राप की वजह से गोवर्धन पर्वत छोटे होते जा रहे हैं। ये भी वास्तव में भगवान की योजना से ही हो रहा है, पुलस्त भी एक निमित्त थे इसमें केवल, क्योंकि गोवर्धन जब तक रहेंगे तब तक कली का प्रभाव उतना नहीं होगा, लेकिन जब गोवर्धन पूरी तरह से अप्रकट हो जाएंगे पुलस्त्य मुनि के शाप के अनुसार, तथा कथित शाप के अनुसार, तो फिर कली का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा। तो हमारा सौभाग्य है कि गोवर्धन अभी तक प्रकट हैं, भले हमें वो नहीं दिखाई पड़े जो वर्णन हम पढ़ते हैं या जो हम प्रवचन में सुनते हैं, लेकिन गोवर्धन वही हैं और वो हमारे सामने प्रकट हैं। तो हमारे इस जीवन में भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि कभी भी हम वृंदावन में जाएं, गोवर्धन का दर्शन करें, बड़े भक्ति भाव से उनका परिक्रमा उनकी परिक्रमा करें, लीला स्थलों की महिमा को सुन लें भक्तों के संग में। यह तपस्या जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप में से कितने भक्तों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है पूरी तरह से? बहुत कम। तो अन्यों को भी कोशिश करना चाहिए, जब संभव होगा तो अवश्य गोवर्धन की परिक्रमा करें। कभी कभी कष्ट होता है, 6 घंटे 8 घंटे लगातार चल के तेजी से चलना पड़ता है, लेकिन अवश्य सभी भक्तों को ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से गोवर्धन जो है वो ब्रजभूमि में, इस भौम वृंदावन में इस तरह से प्रकट हुए। तो गोवर्धन की महिमाओं के बारे में शास्त्रों में भी जगह जगह वर्णन आता है, उनमें से एक कथा हम आपको सुनाना चाहेंगे जिनका वर्णन भी शास्त्रों में आता है। ये एक प्राचीन इतिहास है जिनका वर्णन कई ऋषि मुनियों ने पुराणों में कहा है, जिस वर्णन को सुनकर हमारे पाप भी क्षीण हो जाएंगे, संशय दूर हो जाएंगे, साथ साथ हृदय में गोवर्धन के प्रति प्रेम भी जागृत हो जाएगा। एक बार एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विजय, और वो अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करने के लिए मथुरा गए हुए थे, और वहां पे उन्होंने सब श्राद्ध क्रिया वगैरह सब कर ली। तो सोचा कि मुझे अब तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और जगह गोवर्धन वृंदावन के अन्य वनों में जाना चाहिए। तो एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे, ऐसे भ्रमण करते करते वो गोवर्धन तक आ पहुंचे। गोवर्धन में बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने परिक्रमा किया, जगह जगह लीला स्थानों का दर्शन किया, और फिर वहां एक गोवर्धन शिला उनको प्राप्त हुई और वो शिला लेकर अपने रास्ते से और वापस घर की ओर जा रहे थे। जाते जाते हुआ ये कि अचानक उनके रास्ते में एक भयंकर राक्षस आ गया जिसके 3 सर थे और 6 आंखें थीं और बड़ा दिखने में भयानक था, शक्तिशाली था, और वो उस ब्राह्मण को खाने के लिए सामने आ गया। तो ब्राह्मण विजय ने देखा कि मेरे पास कोई अस्त्र नहीं, कुछ नहीं, मैं अपनी रक्षा कैसे कर लूं? तो था केवल एक गोवर्धन शिला। इस गोवर्धन शिला को लिया, बड़े जोर से जितनी ताकत शरीर में थी उन्होंने राक्षस के ऊपर फेंक दिया। तो जैसे ही इस गोवर्धन शिला का स्पर्श उस राक्षस से हुआ तो राक्षस की मृत्यु तुरंत हो गई उसी क्षण, और फिर उस राक्षस के शरीर से अचानक एक बहुत ही सुंदर प्रकाशमान तेजस्वी एक युवक बाहर निकले जो कि सुंदर वस्त्र पहने हुए था, और उसके शरीर पर तरह तरह के सुंदर मूल्यवान आभूषण थे, फूलों की माला थी इत्यादि। ये ब्राह्मण तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए इस दृश्य को देखकर कि ये कौन नवयुवक है, कहां राक्षस और कहां ये। तो तुरंत बाहर आकर वो नवयुवक कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा, आपने मुझे इस राक्षस के योनि से मुक्त कर दिया और आपने मुझे वास्तव में इस भौतिक जगत के बंधन से भी आपने मुक्त कर दिया। वास्तव में आपने जो मुझे मेरे ऊपर जो कृपा की है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस शिला का स्पर्श मुझसे करके आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। बेचारे विजय ब्राह्मण देखते रह गए। उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हो तो सही लग रहा है कि शिला के स्पर्श करने से आपकी आपका परिवर्तन हो गया, राक्षस जो शरीर है वो त्याग कर आपको ये दिव्य शरीर मिल गया, लेकिन मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं भी विस्मित हो गया हूं, ये कैसे हुआ, ये कैसे है कि ये शिला जो है आपको स्पर्श करके आपका ये रूप हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको मालूम है इसके बारे में कुछ तो कृपया मुझे आप बताइए। तो फिर वो राक्षस कहने, राक्षस मतलब जो पहले राक्षस था, अब दिव्य पुरुष कहने लगा कि गोवर्धन जो है ये पर्वतों के राजा हैं और ये श्री कृष्ण के निजी रूप हैं। केवल गोवर्धन का दर्शन करने मात्र से मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये पूर्ण हो जाता है। अब हे ब्राह्मण, मैं आपको इस गोवर्धन पर्वत की महिमा का वर्णन सुनाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति शिवलोक में जाकर 5000 वर्ष तपस्या करे तो वही फल उसको एक क्षण गोवर्धन के सानिध्य में रहने से प्राप्त हो जाएगा। अब आपको मालूम है ना शिवलोक कहां पर है? कहां है शिवलोक? अब ये सृष्टि की रचना तो आप जानते हैं कि 14 भुवन है, इसके बीच में है पृथ्वीलोक जो भूलोक है, भूलोक के ऊपर भूवरलोक, भू भुव स्व, और इसके ऊपर भी कई लोक हैं, स्वर्गलोक के ऊपर है महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि। तो ब्रह्मलोक जो है इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे ऊंचा लोक माना जाता है। फिर इस ब्रह्मलोक के ऊपर सारे आवरण हैं इस ब्रह्मांड के, इस आवरण के ऊपर भी और ऊपर जाते जाते फिर विरजा नदी है, कारण सागर, जिसमें ब्रह्म ज्योति है, और इस ब्रह्म ज्योति के परे जो है शिवलोक है, और शिवलोक के परे फिर वैकुंठ जगत है। तो शिवलोक भी एक मुक्त स्थान है जहां मुक्त पुरुष जो है वो तपस्या करते हैं, लेकिन पूरी तरह से वैकुंठ जगत में भी नहीं है। तो जो लोग 5000 वर्ष वहां तक तपस्या करते हैं उनको जो लाभ मिलता है केवल गोवर्धन के सानिध्य में एक क्षण रहने से मिलता है। तो देखिए, आप में से जो गोवर्धन की परिक्रमा कर चुके हैं, मानिए कि आपने करोड़ों साल शिवलोक में जाके तपस्या की है। देखिए, इतने बड़े बड़े तपस्वी यहां इस राधा गोकुलानंद मंदिर में बैठे हैं, कोई साधारण नहीं है। और फिर आगे वो कहने लगे, अगर केवल गोवर्धन का दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसको इतना लाभ मिलता है जो कि ब्राह्मणों की सेवा करने से, उनकी उपासना करने से, और कई गायों का दान करने से जिनके सींगों में और जिनके चरणों में सोना लगा हुआ है, ऐसे दान करने से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा लाभ केवल गोवर्धन का दर्शन करने से होगा। और आगे बताने लगे कि गोवर्धन के निकट में, गोवर्धन के ऊपर जो भी कुंड है उनमें एक कुंड में भी स्नान करने से कितना लाभ मिलेगा? 1 करोड़ यज्ञ करने से का लाभ मिल जाएगा। और साथ साथ तीर्थ स्थान तो कई हैं, लेकिन जितने भी ये तीर्थ स्थान हैं इन सब में भ्रमण करने का लाभ जितना होगा उससे करोड़ गुना ज्यादा लाभ गोवर्धन में आने से हो सकता है। गोवर्धन में आने से जो आध्यात्मिक लाभ होगा ये अतुलनीय है। वैसे उपदेश अमृत में भी श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ है वैकुंठ जगत, वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ है मथुरा मंडल, मथुरा भूमि, मथुरा भूमि से श्रेष्ठ है गोवर्धन, लेकिन गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। वैसे राधा कुंड भी गोवर्धन का हिस्सा ही माना जाता है, इसलिए भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ तरतम्य, श्रेष्ठ से ज्यादा श्रेष्ठ और भी श्रेष्ठ। तो जो व्यक्ति ये राधा कुंड और गोवर्धन जो है सारे ब्रह्मांड में, न केवल भौतिक जगत में लेकिन सारे आध्यात्मिक जगत में भी सबसे ऊंचे स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं। सारे वृंदावन में भी ये राधा कुंड और गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इस दिव्य पुरुष ने, जो कि पहले राक्षस था, उन्होंने गोवर्धन की महिमा का वर्णन किया। फिर ब्राह्मण ने पूछा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हो गया इस महात्मा को सुनकर, लेकिन आप ये सुनाइए कि आपको ये राक्षस का रूप कैसे मिला, और आप पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे, और इस रूप को कैसे प्राप्त हुए आप? फिर वो कहने लगे वो व्यक्ति कि कई हजारों हजारों साल पहले की बात है कि मेरा जन्म एक वैश्य कुल में हुआ। मेरे पिता बहुत अमीर थे और बहुत पैसा मुझे बचपन से ही मिला, तो मैं बिगड़ गया, और बिगड़ने के बाद जो है मैं सारे व्यसनों में, गलत आदतों में लग गया। मैं शराबी हो गया, फिर मैं वेश्याओं के पास जाता था, कई तरह के पाप में करता था, और जितने भी बुरी आदतें हैं वो सब मेरे अंदर थीं। हालांकि मेरे माता पिता मेरे बारे में बहुत चिंतित थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मैं उनको बहुत दुख देता था, उनको बहुत कष्ट देता था। वो सोचते थे कि कैसे मुझे ठीक किया जाए। बार बार मुझे वो सही होने के लिए भर्त्सना करते थे, सही मार्गदर्शन करते थे कि तुम क्या करती हो, ठीक नहीं है, तुम सही मार्ग पे आ जाओ। तो मैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता था। एक बार मैं इतना गुस्सा हो गया, इतना मुझे क्रोध हो गया मेरे माता पिता के प्रति कि मैंने उनकी हत्या कर दी, उनको विष पिला दिया, उनको मार दिया। साथ साथ मेरी जो पत्नी थी, तलवार से उसकी गर्दन मैंने काट दी, उसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो भी मुझे बार बार टोकती थी, क्योंकि मैं कार्य ही ऐसे करता था कि कोई भी टोकता। लेकिन उस बार मैं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो मेरे सारे पिताजी का धन लेकर मैं उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला गया, और फिर मैंने एक वेश्या का संग किया, उसको मेरे साथ में रखा, और वो हमेशा वो मेरे साथ रहने लगी। और इस वेश्या के संग में मेरी बुरी आदतें और भी बढ़ गई। मैं दूसरों का खून करने लगा, मैं डकैती करने लगा, सारे तरह के बुरे कार्य करने लगा। और एक दिन ये वेश्या से भी तंग आकर मैंने उसको एक कुएं के अंदर फेंक दिया, उसको मार दिया, और मैं आगे अपना जीवन बिताता गया। जब मैं एक बार शिकार के लिए गया था तो मेरी मृत्यु हो गई वहां पर, एक पशु ने मुझे मार डाला। और फिर मेरी मृत्यु होने के बाद यमदूत मुझे लेने के लिए आए, मुझे उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद मुझे बांध कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने तो बहुत कड़ी सजा मुझे दी, मुझे नरक लोक में भेजा। नरक लोकों में, कई नरक लोकों में मैं घूमता गया घूमता गया, और ऐसे हजारों हजारों सालों तक अनगिनत ऐसे नरकों में घूमने के बाद बहुत दुख हुआ मुझे। फिर मुझे यहाँ भारतवर्ष में जन्म मिला। लेकिन किस योनि में जन्म मिला? पहले एक सूअर की योनि में, फिर शेर की योनि में, फिर ऊंट के योनि में, फिर भैंस, फिर सांप। इस प्रकार से 10,000 योनि बीत गए, 10,000 जन्म मैंने लिए, और ऐसे घूमते घूमते फिर अंततः मुझे ये राक्षस योनि प्राप्त हो गई। राक्षस योनि प्राप्त करते करते मैं इधर उधर भ्रमण करता रहा। फिर एक बार मैं ब्रज में आया, जहां श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में लीला कर रहे थे, तो मैं उनके बीच में घुस गया। तो ग्वाल बालों ने मुझे पहचान लिया कि ये तो एक राक्षस है, वेश बदलकर, शूद्र का वेश पहनकर यहाँ पे आया है। तो फिर ग्वाल बालों ने मुझे बहुत मारा, और इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा। और ऐसे मैं दुखी अवस्था में घूम रहा हूँ, घूमते 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 मैंने आपको देखा, सोचा था कि आपको खाना चाहिए, क्योंकि राक्षसी वृत्ति है ये। और आपने फिर बड़ी कृपा करके मेरे ऊपर ये गोवर्धन शिला का स्पर्श कराया। तो ये गोवर्धन शिला का स्पर्श करने से जो है मेरे सारे पाप क्षीण हो गए, ये राक्षस शरीर भी मुझसे, इससे मैं मुक्त हो गया। और ये जो गोवर्धन शिला है ये इतना पावन है कि देखो, मुझे ये भगवान के धाम भी भेज सकता है। और उस समय जैसी वो बात कर रहे थे, आसमान से एक अद्भुत और सुंदर वाहन आ गया, एक रथ आया। ये रथ चलते चलते, इसके सामने घोड़े थे, और ये रथ की आवाज क्या था? ये रथ का आवाज जो है ये वेदों की ध्वनि थी, वेदों के मंत्र के उच्चारण जो थे वो ये रथ के चलने की आवाज। और इसमें से इस वाहन के ऊपर, रथ के ऊपर गोलोक के निवासी थे, और वो सब मुझे ले गए, उस व्यक्ति को बिठा दिया उस रथ में, और उसको वापस गोलोक वृंदावन ले गए। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि वैकुंठ में जाने के लिए विष्णु दूत आते हैं, वो वाहन को लेकर आते हैं, रथ को लेकर, तो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए क्या होता है? तो इसका अभी उत्तर मिल गया कि गोलोक वृंदावन से भी ऐसा ही एक रथ आता है, उसमें वहां गोलोक वृंदावन के जो भक्त हैं वो आते हैं, कृष्ण दूत आते हैं, और फिर वो लेकर जाते हैं, जैसे इस व्यक्ति को ले गए, और ये ब्राह्मण विजय जो है ये देखते रह गए। इसलिए बताया जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन की सेवा करता है, जो व्यक्ति गोवर्धन की के महात्म्य को अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके पास यमदूत नहीं आ सकते, सपने में भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए महिमा है गोवर्धन की। तो ये महिमाओं का वर्णन अलग अलग पुराणों में इत्यादि होता है। तो खैर, इस प्रकार से गोवर्धन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवर्धन के सानिध्य में रहकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, परंतु हम बेलगाम को छोड़कर तो नहीं जा सकते। 2 साल में 3 साल में एक बार जब भी हम जा सके हमें जाने का प्रयास करना चाहिए, और जाकर भक्तों के संग में जाकर परिक्रमा करके, कीर्तन करके, श्रद्धा से इस कथा, गोवर्धन की कथा को सुनकर हमारे जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। अब हमें अगले जन्म नहीं लेना चाहिए। अगले जन्म में शायद गोवर्धन हमारे लिए न हो। अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन जाने। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि मानो ये हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए। जब किसी का जन्म दिवस होता है तो उसको हैप्पी बर्थडे कहकर लोग उसको उसका अभिनंदन करते हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे बर्थडे तो कोई हैप्पी नहीं होता। ये तो दुख का स्मरण दिलाना चाहिए हमको कि हमारा बर्थ हो गया, हमारा जन्म हो गया, और जन्म लेते लेते भी हम कितने रो कर आए थे। हम खुद भी रोए थे, अपनी माँ को भी बहुत रुलाया था, और आए रोते रोते यहाँ पर, और जाते जाते भी रोते रोते जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा जीवन, मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ जाता है। तो हमें ऐसे जन्म दिवस के ऊपर अंश कोई समय ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए हैप्पी बर्थडे कहने के अलावा कि आपको कोई बर्थडे आगे आए नहीं इस जन्म के बाद, ये जन्म आखिरी जन्म हो, ताकि इसके बाद कोई बर्थ ही ना हो, आपका कोई जन्म ही ना हो। ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म लेना मतलब कष्ट है यहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कृपा की है हम सबके ऊपर कि इस कलयुग में रहते हुए भी हमारे भक्ति के लिए इतने साधन उन्होंने दिए हैं। स्वयं का धाम उन्होंने प्रकट किया है, गोवर्धन को, यमुना जी को प्रकट किया है। इनके सानिध्य को प्राप्त करके हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री गिरि गोवर्धन की जय। हरे कृष्णा। वैसे यार कौए कितने सारी लीलाएं हैं, लेकिन थोड़ी लीलाएं रखें गोवर्धन परिक्रमा के लिए। जब परिक्रमा में जाएंगे तो अन्य लीलाएं, ऐसी लीलाओं का कोई अंत नहीं, और 3-4 प्रवचन भी और हो सकते हैं इसके ऊपर। तो आपके कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
ब्रजवासी लोग जो है पूर्णिमासी के दिन दंडवत परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, और कभी दूध की परिक्रमा करते हैं, इन सब का क्या महत्व है?
हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा करते हैं। दंडवत परिक्रमा मतलब कैसे किया जाता है पता है ना आप सबको? उनके पास पत्थर रहते हैं कई, तो वो पहले दंडवत करते हैं, फिर जहां से उनकी उंगलियां हैं वहां से फिर से खड़े होकर फिर से दंडवत करते हैं, और ऐसे पूरे परिक्रमा करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं। वो क्या है पता है? एक ही स्थान में खड़े होकर 108 बार दंडवत, फिर जहां उंगली है वहां से खड़े हुए, फिर वहां 108 बार दंडवत, फिर आगे। ऐसे भी करने वाले हैं भक्त, परंतु हमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर केवल भक्ति भाव से हम परिक्रमा पूरा करें, अपने चरणों से, अपने पैरों से अच्छी तरह से जाएं, अपनी साधना अच्छी तरह से करें, और गोवर्धन के बारे में, वृंदावन के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में हमेशा सुनते रहें, कृष्ण कथा सुनते रहें, प्रजप नहीं करें, कोई अपराध नहीं करें, हमारी भक्ति भावना ने, भक्ति मार्ग में हम बहुत सिंसियर रहें, हृदय से करते रहें, दृढ़ संकल्प करें कि ये हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए, और जो प्रभुपाद ने नियम बताए हैं उनको सख्ती से पालन करके हम करेंगे तो 108 दंडवत परिक्रमा से अधिक लाभदायक होगा।
दूध की परिक्रमा?
हाँ, यही बात एक ही है। ये तरह तरह की परिक्रमाएं लोग अपने अपने दृष्टि से करते हैं, अपने अपने व्रत के अनुसार लोग करते हैं, तो हमें इतने इस तरह के व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे आचार्यों ने व्रत बतलाए हैं उनको करना हमारे लिए उचित है, उतना ठीक है हमारे लिए। इतना करने से बहुत हो सकता है। अगर केवल प्रभुपाद जी ने हम सबको जो कहा है करने के लिए उतना भी करेंगे तो हम गोलोक वृंदावन जा पाएंगे।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
प्रभु जी, विजय का आपने स्टोरी बताया ब्राह्मण, वो तो पहले एक वैश्य फैमिली में थे, बाद में कई
वो वैश्य वो जो राक्षस थे वो,
हाँ राक्षस थे, मगर ऐसा कभी उन्होंने भक्ति का तो कोई हजारों जन्म में नहीं किया, फिर उनको गोलोक वृंदावन जाने की संधि कैसे मिली?
वैसे उनके पीछे भी अवश्य कोई भक्ति का इतिहास हुआ होगा, वो वैश्य परिवार में आने के पहले भी थोड़ी अज्ञात सुकृति तो अवश्य हुई ही होगी। परंतु इस कथा का सीखने का सबक जो ये है कि गोवर्धन शिला या गोवर्धन इतने पवित्र है, इतने पावन है कि ऐसे पापी व्यक्ति को भी वो भगवान के धाम में भेज सके। अब जो ये कथाएं हैं, ये विशेष विशेष कथाएं हैं, इसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति अगर सोचे कि हम ये हमारे लिए भी हो सकता है तो ये ठीक भावना नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं कि ये एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब ये दुर्लभ केस है, रेयर केस होते हैं, जो सुनाए जाते जो सत्य हैं, परंतु शायद हमारे लिए सत्य ना हो। इसका मतलब है कि हम अगर सोचेंगे कि चलो हम पाप करेंगे, फिर हम किसी दोस्त को ले जाएंगे गोवर्धन, उसको बोलेंगे दूर से पत्थर हमारे ऊपर मारना, लेकिन ज्यादा नहीं मारना, तेज से हमको तकलीफ हो जाए, हम मर नहीं जाएं, हल्के से हमारे ऊपर गोवर्धन शिला मार देना, फेंक देना हमारे ऊपर, तो हम भी गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। नहीं, प्रभुपाद कहते उनके साथ में हुआ होगा लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका इतिहास क्या है, वो पौराणिक कथाएं हैं और उनमें इतिहास क्या हम नहीं जानते। उनके साथ सत्य है लेकिन उनके साथ हुआ, हो सकता है हमारे साथ नहीं होगा, इसलिए हमें इसको आधार बना के चलना नहीं है। लेकिन इन कथाओं का उद्देश्य यह है कि गोवर्धन कितना पावन है, गोवर्धन कितना शुद्ध है, गोवर्धन की सेवा करना कितना आवश्यक है, इस बात को हम इससे सीख सकते हैं। आसान पथ हमें ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन इन कथाओं से मूल सीखने की बात यह है कि गोवर्धन कितना पावन है, कितना विशेष है।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
राधा गोकुलन भक्त समूह को आप गोवर्धन परिक्रमा के लिए कब लेके जाएंगे? हम आपके साथ आना चाहते हैं।
नहीं, वैसे गोवर्धन कब जाएंगे हम यहाँ से पता नहीं, लेकिन अब बम्बई से यात्रा जा रही है, गोवर्धन वृंदावन की यात्रा, जो अभी नवंबर के महीने में, नवंबर नहीं अक्टूबर में जाएंगे, अक्टूबर 9 से 22 नवंबर में बॉम्बे से यात्रा निकल रही है, तो आप में से जो उसमें जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। नंद महाराज जी के पास अभी उसके बारे में जानकारी है, तो आप संपर्क रख उनके साथ कर सकते हैं। तो ये यात्रा में बहुत सारे भक्त आते हैं, 1000-2000 भक्त आते हैं, बड़ी सुंदर कथाएं होती हैं और व्यवस्था भी बड़ी अच्छी होती है, तो आप में से जो जाना चाहते हैं अवश्य आप इसमें जा सकते हैं। और ये 22 दिन की यात्रा है, हमने कितने, हाँ 15 दिन, कितने, 9 से 22, लेकिन जो आधी यात्रा में जाना चाहते हैं उसके लिए भी उन्होंने कोई सुविधा बनाई हुई है। अच्छा, 9 से 16 और 15 से 22, तो आप चाहे तो पूरी यात्रा में जा सकते हैं, चाहे तो पहले भाग में जा सकते हैं या दूसरी भाग में जा सकते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप इस गोवर्धन यात्रा, शायद इस बार गोवर्धन परिक्रमा भी अवश्य होगी पहले चरण में, तो पहले चरण में गोवर्धन परिक्रमा भी है, तो आप इसका लाभ भी अवश्य ले सकते हैं। भक्तों के संग में ब्रज में जाना ये बहुत विशेष एक लाभ है। ठीक है, को जाना आप अवश्य नंद महाराज प्रभु से बात कर सकते हैं और जानकारी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग किसी न किसी वजह से, बच्चों की परीक्षा की वजह से या आर्थिक वजह से या किसी भी वजह से नहीं जा सकते हैं, तो फिर अक्टूबर में शायद तिरुपति की यात्रा होगी जो यहाँ से निकलेगी, छोटी सी यात्रा, लेकिन अवश्य वृंदावन में जाने का प्रयत्न करें आप, क्योंकि ऐसे मौके हैं वो बहुत कम मिलते हैं। क्या हम हमारे घरों में गोवर्धन शिला के पूजन कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, और वो पद्धति आपको बताई अभी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को स्वामी को कहा था उसी पद्धति के अनुसार आप कर सकते हैं, बहुत सरल है। क्या करना है? गोवर्धन शिला को गंगा जल अर्पण करना है, साथ साथ 8 तुलसी मंजरी, हर एक मंजरी के बाएं दाएं एक तुलसी पत्ता, बाएं दाएं मतलब दो तुलसी पत्ते, और थोड़ा सा दूध का एक पदार्थ आप अर्पण कर सकते हैं रोज, और फिर चाहे तो गोवर्धन का आभूषण भी आप कर सकते हैं, मुकुट आप आंख तिलक से वगैरह आप कर सकते हैं, इस प्रकार उनको आप श्रृंगार अच्छे अच्छे कपड़े भी दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा सा आसन बना सकते हैं, सिंहासन बना सकते हैं, इस तरह से अपने घर में अवश्य आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अन्य पूजा करने की विधि वो होनी चाहिए, स्वच्छता का पालन होना चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए, ये सब करेंगे तो गोवर्धन शिला की पूजा अवश्य आप कर सकते हैं। परंतु ये गोवर्धन शिला आपको कैसे प्राप्त होगी, जब तक आपको कोई ब्रजवासी नहीं देते, आपके गुरु आपको नहीं देते, तब तक आपको गोवर्धन शिला नहीं लाना चाहिए, वैसे ही उठाकर लाना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहां पर है, हम गोपाल जी का दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय गोपाल जी ऊपर थे ना गोवर्धन के, तो गोपाल जी तो चैतन्य महाप्रभु के लिए, रूप गोस्वामी के लिए नीचे आए, लेकिन हमारे लिए तो नहीं आएंगे, ये शायद ये प्रश्न है, हम कैसे दर्शन कर सकते हैं। गोपाल जी ने बड़ी कृपा की है, और एक तरह से भी वो वृंदावन से आकर अभी कहां पर है, नाथ द्वारा में है, राजस्थान में उदयपुर के पास। मुगलों के डर से गोपाल जी को उनके भक्तों ने यहां पर लिया, क्योंकि विट्ठल विट्ठलेश्वर उनकी उनके घर में थे ना गोपाल जी, तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जो भक्त हैं वो देखभाल करते थे, तो फिर उन्होंने ही यहाँ पर उदयपुर में उनकी स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इसलिए नाथ द्वारा जो है ये पुष्टि मार्गी भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो अब उन्हीं गोपाल जी का दर्शन नाथ द्वारा में कर सकते हैं। जब द्वारका की यात्रा निकली थी यहां से, तो इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी कि द्वारका डाकोर के साथ साथ हम नाथ द्वारा भी जा पाएंगे या नहीं, लेकिन उसमें दो दिन ज्यादा लग रहे थे, इसलिए फिर वो कैंसिल हो गया। हो सकता है जब जयपुर की यात्रा निकलेगी, जयपुर उदयपुर होकर गोपाल जी के दर्शन भी हो जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी ने?
हरे कृष्ण। अभी हम तो भक्ति में इतने पीछे है कि अभी सत्व गुण के नजदीक भी नहीं है।
क्यों
तो...
है पीछे नहीं होना चाहिए, केवल हम पीछे हैं करके उसी में संतुष्ट होना नहीं, हम भी आगे हो सकते हैं, ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हम पीछे हैं, हमसे क्या होगा, हम कुछ नहीं होगा हमसे, नहीं। हम अगर भक्तों के साथ में रहेंगे, भक्तों की कृपा प्राप्त करेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, सिंसियरिटी, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इस बात का सहारा लेकर हमें भक्ति को कम नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अभी तक नौसुखिया हैं, अब हम क्या करेंगे इस जन्म में, अब हमसे क्या होगा, नहीं। बड़े उत्साह से, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तो हमें तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, जो साधन है हमारे लिए उनका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, बड़े सिंसियरली हृदय से करना चाहिए, तो हम भी अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न क्या था? और हरे कृष्ण,
ये श्रीनाथ जी का जो रूप है उसमें भी उनके लेफ्ट हैंड ऊपर है, क्या वो भी गोवर्धन संबंधित है या?
बिल्कुल बिल्कुल, गोपाल जी का रूप है श्रीनाथ जी जो बोलते हैं, जो नाथ द्वारा में है, वो भी गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, उसी रूप में है वो, जो मूल रूप वहां थे वही मूर्ति अब नाथ द्वारा में है, गोवर्धन को धारण किए हुए। और कोई प्रश्न? ठीक है, गिरि गोवर्धन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।